इब्तदाई रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, जिसके कब्जे कुदरत में हम सबकी जान है, जिसके सामने रोजे महशर हमने खड़े होना है। इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या बिल्कुल ठीक ठाक है, एक साउंड एंड स्ट्रांग हेल्थ के साथ आज के प्रोग्राम को भी एंजॉय करने के लिए, सुनने के लिए मेरी यानी कि मारी के बिल्कुल साथ साथ है। समय एफएम को लगाए हुए हैं ऑन 107.4 फ्रीक्वेंसी, अपनी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज पर, और सारे जहान में ऑन samayfm.com। ये लाइव इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, पेशावर, भावलपुर और सारे जहान में ऑन samayfm.com। वेलकम बैक, दिस इज September 6th, 2021, पाकिस्तान का यौम दिफा है, और है कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की जबान पर नारे तकबीर आता है। लेकिन इसके साथ साथ एक डिफरेंट सा ट्रिब्यूट मैंने सोचा कि पेश किया जाए। ये ट्रिब्यूट है, जिक्र तो इसमें पहाड़ों का है,
जाता हूँ रास्ता देखने,
लेकिन ये ट्रिब्यूट है सभी उन कौम के बेटों के नाम जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा में, सिर्फ फौज में नहीं बल्कि किसी भी शोबे में रहते हुए, किसी भी महकमे में रहते हुए अपना किरदार अदा किया। चाहे वो डॉक्टर्स थे जो कि कोरोना से बचाते हुए हमारे मरीजों को, हम पाकिस्तानियों को कोरोना से बचाते हुए खुद कोरोना का शिकार हुए, चाहे वो पुलिस वाले जो गलियों मोहल्लों में अपनी फर्ज की अदायगी के लिए जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर देते हैं, चाहे वो असातिज़ा जो पढ़ाने जाते हैं और कभी पढ़ाने गए और फिर कभी वापस ना आए। जी हाँ, आपका ताल्लुक चाहे जिंदगी के किसी भी शोबे में है, अगर आपने पाकिस्तान के लिए अपना आप कुर्बान किया है,
वो सुबह
रेस्क्यू 1122 के अहलकार हमारे जांबाज को पैमा
जो है जिसमें
जो भी पाकिस्तान के लिए आज तक कुछ कर पाया उसके नाम। अरे वाओ, 41 past 10, क्या यखबस्ता हमारे मेरे कानों में चल रही है। अच्छा, आप समा क्लब सुन रहे हैं, मैं इमरान हसन हुआ, मुझे मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 रात सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच, सुनते हैं, अच्छा लगता है हमें, और हम भी तो सिर्फ आप ही को सुनाते हैं। आई होप अगर आपने वॉर हिस्ट्री अपनी नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िए, आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, आपके लिए अपनी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, खासतौर पर वो लोग जो कि आजकल के यूथ हैं, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है कि आप जानिए आपके फोर फादर्स ने किस तरीके से पहले पाकिस्तान बनाने में, फिर कुछ मौाकों पर पाकिस्तान बचाने में अपना रोल अदा किया। पाकिस्तान की इस तारीख के अंदर हमसे कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ भी हुई, उनको भी जरूर पढ़िए, और जो हमने पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूशन किया, पाकिस्तान को बनाया, इसको बेहतर किया, उसको भी जरूर पढ़िए, दोनों चीजों को पढ़िए, ताकि आप अच्छी बातों पे फखर और गलतियों से सबक सीख सकें। 10:42, ब्यूटीफुल बाय द लेजेंड राहत फतेह अली खान, ट्रिब्यूट टू नन अदर देन उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, जो कि उनके चचा बनते हैं, ताया बनते हैं, वो भी थे, अंकल थे इनफैक्ट, ये कह लेना चाहिए, ज्यादा सेफ है, और उसके साथ साथ उनके उस्ताद भी थे। खैर, कुछ ऐसा ही मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां जहां भी हम सुने जा रहे हैं, वेलकम बैक टू द शो, थैंक यू वेरी मच, वेलकम बैक इसलिए कह रहा हूँ चूंकि दो छुट्टियां थी ना बीच में, इसलिए। सो दिस इज सोच एंड हादियाश, एग्जैक्टली व्हेन यू आर ऑफ टर्न द म्यूजिक ऑन, टर्न द रेडियो ऑन, टर्न समा ऑन। भाई, बहुत सारे हमारे ऐसे फौजी दोस्त हैं या बहुत सारे हमारे ऐसे सिक्योरिटी इदारों के दोस्त हैं जो घरों से बड़े दूर हैं और अपनी अपनी यूनिट्स में बैठकर हमारा रेडियो सुनते हैं। एक वक्त में जब हम लाइव कॉल्स लेते थे, अब तो जब से मैं लाहौर स्टेशन से शो करता हूँ लाइव कॉल्स नहीं होती है शो में, लेकिन जब भी हम इस्लामाबाद होते हैं या होते थे तो बहुत सारी कॉल्स हमें आती थी मुख्तलिफ फौजी यूनिट से, एंड दे यूज्ड टू ट्यून समा क्लब विद मारी। मैं आपको भूला नहीं हूँ मेरे दोस्तों, कुछ तो मुझे नाम भी याद हैं जिनमें से एक नाम मुमताज का भी था, जहां जहां भी मैं सुना जा रहा हूं, जहां जहां पे खास तौर पे वो लोग जो कि अपने घरों से दूर हैं और अपने पिंड के किसी बहुत ही खूबसूरत ठंडे तालाब को, उसके साथ किसी ठंडे से पीपल या बोर्ड के दरख्त को, या साथ मौजूद ग्रीन सब्ज मैदान को याद कर रहे हैं, तंदूर दी रोटियां दे नाल ठंडी लस्सी आपके लिए मेरी तरफ से। दिलचस्प बात है ना, जब आप अपने गांव में अपने इलाके में रहते हैं तो उस वक्त आप चाहते हैं कि आप यहाँ से बाहर जाएं, कहीं बाहर जाएं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, खासतौर पे हमारे जो गांव में देहातों में रहने वाले नौजवान होते हैं, बाहर जाने का बड़ा शौक होता है, और बाहर भी सिर्फ शहर से बाहर नहीं, पाकिस्तान से बाहर जाने का बड़ा शौक होता है, और इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं यार, हम किसी तरीके से सऊदी अरब चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, और कुछ लोग कहते हैं अमेरिका चले जाएं, यू नो डिफरेंट जगहों के ऊपर. एंड व्हेन दे गो अब्रॉड आफ्टर टू एंड हाफ मंथ्स, उसके बाद उनकी हालत देखने वाली होती है. उसकी वजह है ना कि ये मिट्टी जो हमारा बोझ बर्दाश्त किया हुआ है, मैं तो इसको बोझ ही कहता हूँ क्योंकि हम इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं. जिधर से चला था उधर ही खड़ा है ये मुल्क. मुकाबले की हम अगर बात करें, हम अगर अपने मुकाबले में चीन जैसे ममालिक को देखें जो हमसे 1-1.5 साल बाद आज़ाद हुए, या हम अगर मलेशिया जैसे ममालिक को देखें जो हमसे बहुत ज़्यादा कोई ब्लेस्ड नहीं है बहुत सारी चीज़ों में, हम जहाँ से चले थे मुझे लगता है हम वहीं पे खड़े हैं, उससे हिले नहीं, बस 1-2 शोबों को छोड़कर. तो बाहर की जो मिट्टी है वो ये बोझ कम ही बर्दाश्त करती है, और बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर जाकर भी अपने आप को प्रूव कर पाते हैं. उसकी वजह ये है कि उस माहौल के अंदर अपने आप को, और बहुत सारे हैं पाकिस्तानी जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया, जो कर रहे हैं, जो यहाँ से बड़ी मुश्किल से जाते हैं, बड़ी मेहनत से जाते हैं, लेकिन अपनी मिट्टी को याद रखते हुए बाहर जाके मेहनत करते हैं. लेकिन ये सारी बात जो मैं कर रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि क्यों ना हम जिस सर्कमस्टांसिस के अंदर रहते हैं, खास तौर पे गांव देहातों में रहने वाले जो नौजवान हैं, अगर वो थोड़ा सा जो अपनी ज़रात है, जो एग्रीकल्चर है हमारा, उसकी जानिब ज़्यादा मुतवज्जे हो जाएं, उस पर ज़्यादा काम करना शुरू कर दें, उसको ज़्यादा फोकियत देना शुरू कर दें, तो वो बाहर से कहीं अच्छे पैसे इज्जत के साथ अपने घर में रह के अपने पिंड दियाँ टालियाँ ते बेरियाँ तले बह के कमा सकते हैं, अपनी माँ के साथ रहते हुए, अपने बाप के साथ रहते हुए. और इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है अगर आप अपने वालिद के साथ रहते हैं. बहुत सारे लोग हैं मुल्क से बाहर रहते हैं, वालिदैन पाकिस्तान में हैं, बेचारे मिल नहीं पाते हैं, और उनके दिल की हालत सिर्फ वो जानते हैं या उनका रब जानता है. वो काम तो कर रहे होते हैं दिन रात, सुबह शाम काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, पैसे भी कमा रहे होते हैं, पैसे भेज भी रहे होते हैं, उनके पैसों से पाकिस्तान में गाड़ियां भी आ रही होती हैं, घर भी बन रहे होते हैं, लेकिन उनका दिल कहीं और जा रहा होता है. और वो दिल कहाँ होता है? वो दिल यहाँ होता है. बड़े बामकसद गाने हैं कुछ अबरार के. ये कहते हैं, फायदा कीजिए रुस तेरी छा गई. खुदाना खास्ता आपकी माँ को अगर कुछ हो गया तो क्या फायदा उस स्टेटस का जो कि आप कमा रहे हैं, जो बना रहे हैं. अगर तो बहुत बड़ी मजबूरी आपकी बाहर रहना या वालिदैन से दूर रहना, तो मजबूरी का तो कोई दूसरा, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो माँ बाप के साथ रहिए. वो कहें ना कहें, वो महसूस आपको होने दें या ना दें, उनको आपकी जरूरत है. इसी दिन के लिए तो उन्होंने आपको पैदा किया था कि आप जब वो बूढ़े हो जाएं तो आप उनकी खिदमत करो. कुरान भी तो यही कहता है कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो फिर उनकी खिदमत करो, उनको उफ तक ना कहो. तो खैर, मजबूरी अपनी जगह, नौकरी अपनी जगह, अगर मजबूरी है तो फिर तो आपकी मजबूरी है, उसका तो कोई हम एक्सक्यूज दे नहीं सकते. लेकिन कुछ लोग ऑप्ट करते हैं दूर जाना, घर से बाहर रहना. तो फायदा कीजिए रुस तेरी छा गई है. 11:14 आप समय FM सुन रहे हैं, इमरान हसन. आई गेस ये पहली एल्बम से गाना है बिलाल का, और बहुत ही जबरदस्त गाना. बॉलीवुड में एक फिल्म में फीचर भी हुआ ये गाना. और बिलाल सईद के बारे में आपको बताएं कि इन दिनों वो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर मौजूद हैं और अपनी नई एल्बम के ऊपर काम कर रहे हैं. बिल्कुल सही सुना आपने, नॉट जस्ट अ वीडियो, एक कंप्लीट एल्बम के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें सारी बात है 8-10 गाने तो होंगे. और न सिर्फ उसके ऑडियोज के ऊपर उन्होंने काम किया है, उनके लिरिक्स वगैरह लिखे और कॉम्पोजिशंस वगैरह बनाई हैं, गाया है उनको, बल्कि उनकी वीडियोज के ऊपर भी बिलाल काम करे. और अक्सर अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोग्रेस है वो शेयर करते नजर आते हैं. रिसेंटली एक वीडियो बिलाल ने बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने फैंस को भी इस अमल के अंदर शामिल रखना चाहता हूं. सो उन्होंने आपसे सजेशंस मांगी हैं कि आप किस किस्म की वीडियोस उनकी देखना चाहते हैं. अब मैं लिख नहीं सका, लेकिन जरूर कहूंगा कि ऐसी वीडियोस जिसमें किसी किस्म की कोई किक ना मारी गई हो, वो वीडियोस में देखना चाहूंगा. वेल, बिलाल इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट. लेकिन अभी मैं जस्ट सोच रहा था कि बिलाल ने आज तक कोई नेशनल सॉन्ग नहीं गाया, गाना चाहिए. इस पे गिला नहीं है, ये आर्टिस्ट की चॉइस है, इस पे फतवे नहीं लगा देने हमने, मतलब उसकी चॉइस है, वो जिस किस्म का भी म्यूजिक करे. लेकिन कोई एक नेशनल सॉन्ग होना चाहिए बिलाल, अगर है भी तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं किया बिलाल ने, तो एक नेशनल सॉन्ग अच्छा सा होना चाहिए कम अज कम आपकी प्रोफाइल के ऊपर, ताकि हम वो भी 6 सितंबर, 14th August, 23rd March या किसी ऐसे दिन के ऊपर चलाएं. हमें अच्छा लगता है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हाल इसका जो भी हम मर्जी कर दें, मुल्क तो हमारा है ना, तो होना चाहिए. खैर, एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से. ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं. ऐ राहे हक के शहीदों. I always want to pay this tribute whenever it's a defense day or something. हमारा दिल जाता है, हमारा कलेजा जाता है इन लोगों के साथ. और मैं बहुत एक जज्बाती आदमी हूँ, आप यकीन जानिए. मतलब वो जो फिल्मों में देख के सीन्स रो पड़ने वाले लोग होते हैं ना, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. तो टोक्यो भी जब मरी थी अभी मनी हाइस में, तो आई वाज अ बिट सेंटी. खैर, लेकिन फौजियों को खास तौर पे, और हमारे, हम हमेशा फौजियों का नाम ही लेते हैं, पुलिस वाले भी, जितने भी हमारे डिफेंस, जितने भी हमारे फोर्सेस के लोग हैं, सारे हम इतने ही अजीज हैं, सब एक जैसे हैं, क्योंकि सब कौम के बेटे हैं. और जो अपनी जान ही दे दे मुल्क के लिए, उससे बढ़ के और क्या होगा, जो जान ही दे दे अपनी. तो जब भी मैं इन लोगों का जिक्र सुनता हूँ, करता हूँ, दास्तानें शहीदों की फैमिली से हम मिलते हैं, बात होती है, तो यकीन जानिए दिल जाता है साथ कि कैसे कर लेते हैं यार ये लोग, कैसे कर लेते हैं. और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जिस जिस चीज़ के बारे में कुरान ने, अहादीस में इस्लाम ने बहुत बड़ा दर्जा बताया है ना, जिस जिस चीज़ के बारे में कहा है कि उसका बड़ा ही दर्जा है, बहुत बड़ा दर्जा है, वो बज़ाहिर लगता है कि शायद पता नहीं कोई बहुत बड़ी कुर्बानी ना हो, लेकिन वो मुश्किल तरीन अमल ही है जिससे गुजर कर वो इतना बड़ा दर्जा आपको मिलता है, ऐसे नहीं मिलता. और उसी में शहदा ओबियसली सबसे बड़ा दर्जा है उनका, तो सबसे मुश्किल काम वही करते हैं. देन साबिरीन का बहुत बड़ा दर्जा है, सबसे मुश्किल काम किसी मुश्किल वक्त के अंदर सब्र करना है. ये आपको उस वक्त पता चलता है जब आप एक मुश्किल पड़ती है और आप उस पर सब्र कर जाते हैं. सब्र करना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है मुझे लगता है. और इसी तरह से शहादत का मैंने जिक्र किया और कई और अमल है. तो दिल जाता है जी, यकीन जानिए, सिर्फ एक दिन नहीं है, सभी दिन उन्हीं लोगों के नाम है, चूंकि वो अपनी जिंदगियां दे बैठे. और कई शहीदों को मैं जाती तौर पर जानता हूँ, मेरे अपने ताया 71 वॉर के शहीद हैं, पाकिस्तान आर्मी में थे, और मैं ऐसे कई शहीदों को जानता हूँ, कई शहीदों को मैं जानता हूँ जिनकी, जिनके दो दो माँ के बच्चे, और जिनके बच्चे माओ के पेट में थे, और उनके उनके वालिद जो थे, जो कैप्टन रैंक के ऑफिसर्स थे या लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर्स थे, वो शहीद हो गए, उन्होंने अपने बच्चे देखे ही नहीं, उनकी मौत के बाद बच्चे पैदा हुए. और कई ऐसे थे जिनके बच्चे पैदा हो गए, उनको खबर मिली, बट दे वर इन द बैटल फील्ड, बट वो अपने वापस नहीं आए और उनकी शहादत हो गई. कई ऐसे थे जिनकी शादी हुई, जिनकी जवान बीवियां बेवा हो गई, कई लोग ऐसे हैं. और कई ऐसे हैं जिनके दो दो तीन तीन बच्चे बेचारे वो यतीम हो गए. तो ये ऐसी कई दास्तानें आप जब पढ़ने और देखने निकलते हैं, तो सिर्फ इसके लिए आपका पाकिस्तानी होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आपका इंसान होना ज़रूरी है जब आप इन कुर्बानियों को देखते हैं. और फिर जब हम ये देखते हैं कि हम इस मुल्क के साथ क्या करते हैं, हम कितनी डिसऑनेस्टी करते हैं इस मुल्क के साथ, हम इसको कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप यकीन नहीं, यकीन जान सकते हैं वो लोग जो कि बाहर गए हों या कभी बाहर ट्रेवल किया है, कि आपको कितनी ह्यूमिलिएशन होती है जब आपका ग्रीन पासपोर्ट दे के इमिग्रेशन ऑफिसर आपको साइड पे कर देता और कर देता. और मतलब मेरे साथ तो इत्तेफाक कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ये हुआ कि वहाँ पे जो कुछ इंडियन पासपोर्ट वाले लोग थे उनको ज़रा बेहतर ट्रीट किया गया. आई वॉज फीलिंग सो गिल्टी एट दैट टाइम कि इनमें ऐसा क्या है. लेकिन ठीक है, इंटरनेशनल लॉबीज इन इंटरेस्ट एंड ऑल, लेकिन हमने भी तो देखना है ना कि हमने अपने मुल्क के साथ क्या किया है, हम कितने मुखलिस हैं इसके साथ, हमने आज तक कितना इसको बिल्ट अप किया. आजकल के स्टूडेंट्स, आजकल के जो लोग हैं वो बड़े ऑनेस्ट हैं, बहुत ब्राइट हैं, आई नो, बड़े हार्ड वर्किंग हैं, दे वांट टू डू समथिंग फॉर देयर कंट्री. लेकिन अभी हम जिस स्टेज के ऊपर हैं, हमने क्या किया है. हम अगर अभी भी, हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि सब अपना काम पूरा करना शुरू करते हैं, जो भी मेरा काम है, चाहे मैं एक डॉक्टर हूँ, चाहे मैं एक हकीम हूँ, चाहे मैं एक गवाला हूँ, कोई भी काम करना शुरू कर दें, अपना काम पूरा करना शुरू कर दें और ईमानदारी से करना शुरू कर दें, तो मुल्क बेहतर होना शुरू हो जाएगा. हमारा मसला ये है कि इमरान हसन अली साहब की तरफ देखता है, अली साहब रजा साहब की तरफ देखते हैं, रजा साहब नासिर साहब की तरफ देखते हैं कि ये काम ठीक करें, अपना खुद ठीक नहीं होते. सो दैट्स द प्रॉब्लम. मेरा काम है खैर खुद को और आपको रिमाइंड करवाना. और ये जो सारी बातें, ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, ये मेरे अपने लिए भी होता है, बिकॉज मैं भी आप में से ही हूँ, आप भी मुझ में से ही, हम सब एक दूसरे में से हैं. सो खुद से हमने खुद को ठीक करना है, अपनी बात करनी है. ओके पैंडे लम्बी आराम आयश दिया. लेकिन उम्मीदें जवान हैं, अज़्म साथ है, पल्ले सच ते मोजा ही मोजा. Why not? 32 past 11. This is Summer Club and this is the Defence Day Special. आप लोगों के मैसेजेस में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने पोस्ट तो कर दिया था, पोस्ट सिर्फ इसलिए किया था कि पता लग जाए, जिसने सुनना है वो सुन ले, क्योंकि आजकल लोग किसी भी चीज़ से ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हैं ना, मतलब टीवी से ज़्यादा, रेडियो से ज़्यादा, किसी चीज़ से भी ज़्यादा जो लोग चीज़ देखते हैं वो सोशल मीडिया है. तो इसलिए हमने पोस्ट कर दिया था ताकि आपको खबर हो कि हम हैं, हम आ गए हैं. सो इस वक्त हिरा उस्मान, एहाद अब्बास ट्यून फ्रॉम कराची, आयशा यूसुफ, अमार हसन शाह फ्रॉम भावलपुर, अलीशा मीर, हाउ इज योर मूड मैकेनिक, मैं बिल्कुल ठीक, जुलेखा अब्बास, अलिशा, बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम मैं पढ़ नहीं सकता, आज पढ़ने का मूड नहीं है, कल पढ़ेंगे, अटेंडेंस वाला सीन कल करेंगे. येट ये है कि हम थोड़ी गपशप लगा रहे हैं और मुख्तलिफ मौजूदात पे मेरा जहन घूमता घूमता चला जा रहा है. इतने लोग मुझसे सवाल करते हैं कम्युनिकेशन को लेकर, कम्युनिकेशन कैसे बेहतर करें. भाई कम्युनिकेशन बोलने से बेहतर होती है, जहां पे भी आपको लगे कि यहां पे आप नहीं बोल सकते, या आपके दिल में धक 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 हो कि यहां पे मैं कैसे बोलूं, वहां पे आपने कोशिश करना है कि बोलें। जैसे कि कल आपको एक एग्जांपल देते हैं, कल हम एक स्टोर के ऊपर गए अम्मी के साथ, और वहां पे उन्होंने, वो बहुत बड़ा स्टोर है लाहौर का, लेकिन उन्होंने जो हैंड सैनिटाइजर है वो नहीं रखा हुआ था, और मैं एक रो में लगा हुआ था, एक लेन में था, और काफी सारे लोग वहां पे खड़े थे, आई मीन 10-12 लोग तो होंगे जो एक कतार में थे। तो मुझे फील हुआ कि अब मैंने सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन मुझे था कि किसी को इस्तेमाल करना भी हो सकता है, और हो सकता है कि कोई यहाँ पे इसलिए ना पूछ रहा हूँ क्योंकि नहीं बढ़ावा, और इतने सारे लोगों में बोलना जरा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो यूं करके पाकिस्तान में वैसे भी थोड़ा ये ज्यादा ट्रेंड है, सारे आपके मुंह की तरफ देखेंगे कि इस शख्स ने जो भी बात की है, दो के फिर वो अपने काम में बिजी हो जाएंगे। तो कैच इसी में कि फिर वो अपने काम में बिजी हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार शायद बोलना चाहिए, तो मैंने बजाय इसके कि मैं प्यार से आराम से कहता कि यार सैनिटाइजर कहाँ पे, किसी एक को पास बुला के मैंने बावाज़े बुलंद जो काउंटर के ऊपर साहब खड़े थे, कैशियर साहब, उनको मैंने मुखातिब करके कहा कि यार वेयर इज सैनिटाइजर, आपने क्यों नहीं रखा हुआ? तो उसने कहा सर रखा हुआ है, आपको देते हैं। एंड व्हाट आई फेल्ट यू नो, जो इसमें मेरे लिए सेटिस्फैक्शन की बात ही हुई थी कि तो चलो सैनिटाइजर तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर के फियर को मारना। अब ये एक जायज़ बात थी, आपने बदतमीजी नहीं की, आपने सिर्फ थोड़ा सा लाउड उसको मुखातिब किया। और ये छोटी सी मिसाल मैंने इसलिए दी है कि उस वक्त जब मैं पहले बोलने लगा, मेरे दिल में भी आया कि छोड़ो यार इतने लोग खड़े हैं क्या जरूरत है। जहां पे ये बात आपके माइंड में आती है, छोड़ो यार इतने लोग खड़े हैं क्या कहेंगे, क्या जरूरत है, रहने दो फिर सही, मुझे क्या, ये जुमले, इन जुमलों को लिख लें अपने अपनी डायरी के ऊपर, अपने पेज के ऊपर, अपने कमरे की दीवार के ऊपर, अपने बेड के ऊपर, अपनी अपने बिस्तर के ऊपर, मंजी के ऊपर, जहां पे भी आप रहते हैं, जो चीज आप सबसे ज्यादा देखते हैं, मोबाइल के वॉलपेपर के ऊपर, के छोड़ो यार रहने दो लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या, फिर कभी, इस तरह के जो 8-10-12-15 जुमले हैं ना, ठीक है, वो लिख लें और वो आप अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करें। जहां पे भी ये जुमला आपके माइंड में आए, उधर आपने अपने आप को अपने साथ बगावत करनी है। जहां पे अंदर से आपको ये आवाज आए कि लोग क्या कहेंगे, छोड़ो यार मुझे क्या, रहने दो फिर सही, इन जुमलों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, इन जुमलों को अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश कीजिए। जुमले निकलेंगे नहीं आपकी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से भी मुकम्मल तौर पे नहीं निकलते। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिशियल मीटिंग के अंदर जहां पे आपके दफ्तरी लोग बैठे हैं और वहां पे आपको एकदम से कुछ बोलना पड़े तो आपको बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमें याद है जब हम कॉलेज हुआ करते थे, कॉलेज भी हम हुआ करते थे वैसे, वो भी एक जमाना था, तो उस वक्त जब सर पढ़ा रहे होते थे और सर ये कह देते थे कि जहां किसी को कोई बात समझ ना आए फौरन मुझसे पूछें, तो मैं अक्सर सवालात वैसे ही पूछ लिया करता था और मैं इतने पक्के मुंह से पूछता था कि सर को लगता था कि वाकई कुछ इंटेलिजेंट टाइप ऑफ पर्सन ही इज, और कुछ जानत की बात ये करेगा। तो कभी उनको क्वेश्चन हमारा अच्छा लगता था, कभी नहीं लगता था, लेकिन अक्सर वो जवाब लाजमी देते थे, तो उससे हमें एक तसल्ली मिलती थी। कुछ असातज़ा डांट भी देते थे कि मैं पढ़ा रहा हूँ बाद में पूछना है, लेकिन हमने अपनी इस आदत को नहीं छोड़ा, वो आदत फिर साथ चली। उससे फ़ायदा ये हुआ, या फ़ायदा ये होता है कि फिर आप किसी बहुत बड़े आदमी की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे होंगे और वहाँ पर भी आपके माइंड में कोई सवाल अगर आएगा तो आप वो सवाल करेंगे। अपने वालिदैन, अपने बड़ों के बीच में भी कोई अच्छी चीज़ आपके माइंड में आएगी, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप अपना अपनी राय दे सकते हैं, तो आप ये कह के कि यार पुप्पो बैठी हैं वो क्या कहेंगी, ताया क्या कहेंगे, यू नो बाहर किसी स्टोर में लोग क्या कहेंगे, तो फिर आपके अंदर वो जो डर है, मुझे लगता है ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, कोई साइकोलॉजिस्ट सुन रहे हो कहीं यार ये क्या बच्चों को गुमराह कर रहा है बैठ के, ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि आप अगर छोटी छोटी जगहों पर अपने इस डर से बगावत करते जाएंगे ना, तो वो किसी बड़ी जगह पर भी जाके आपको इतना अंदर से स्ट्रांग कर देगा कि आप उस डर से निकल के, अपने उस डर की दीवार को तोड़ के आप डिस्कस करेंगे, आप बात करेंगे, और बहुत सारे मामलात सिर्फ इस वजह से ख़राब हो जाते हैं कि छोड़ो यार लोग क्या कहेंगे, फिर कभी सही। जैसे किसी दोस्त ने, चार दोस्तों के बीच में बैठे हुए किसी दोस्त ने आपसे कोई बात की और वो बात आपको अच्छी नहीं लगी, और आपने बज़ाहिर नागवारी दिखाई लेकिन आप उसका इजहार नहीं कर पाए, तो वो बात वो फिर चार और लोगों में करेगा, या चार लोग जो सुन रहे हैं वो फिर वो बात वो भी करेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी चीज़ पे आपको छेड़ा जो आपको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने आपको कहा ओए मोटे या ओए मोटी और आपको अच्छा नहीं लगा, और आपने उसको कहा नहीं कि यार मैंने इस चीज़ को फील किया और मैं इस चीज़ के लिए सेंसिटिव हूँ और तुम्हें ये दोबारा चीज़ नहीं करनी है, तो वो फिर कहेंगे आपको। तो इसलिए वो आप कब नहीं कहते, जब वो कहते हैं छोड़ो यार फिर सही, नहीं कहता, हालात ख़राब हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, भाई हो एक्सप्रेस योर सेल्फ जहाँ पे भी। तो लोग बात कम्युनिकेशन से शुरू हुई थी, सो दिस इज द बेसिक टूल। बाकी बातें तो हम सब करते हैं ना, गल्लां तो ऐसी सारे करते हैं, यू नो जुबान तो हम सब के साथ लगी हुई है, अच्छी या बुरी बातें तो हम सभी करते हैं, लेकिन मौजू वक्त के ऊपर मौजू बात करना और अपने उस शेल्फ से अपने आप को निकालना जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है, वो तभी होता है जब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, छोटे छोटे औकात के ऊपर, मुख्तलिफ औकात के ऊपर आप ये प्रैक्टिस करते चले आए, तो फिर आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप किसी बड़ी जगह पर भी कोई ऐसी बात कर सकते हैं जहां पे आम लोग कहते हैं छोड़ो यार कल सही, नहीं नहीं यार अच्छा नहीं लगता। मतलब किसको अच्छा नहीं लगता, जिनको कहना है उनको, उनकी वजह से तो बुरा लग रहा है, ना लगे उनको अच्छा। So express yourself, this is the first rule. ये मना वाला जो रूल है ना, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे लोग जिंदगी में बहुत कुछ कह नहीं पाते, जैसे बहुत सारे हॉस्टलाइट्स होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, समटाइम्स दे स्टार्ट लाइकिंग टू ईच अदर और समबडी स्टार्ट्स लाइकिंग टू समवन एल्स और वो उससे कह नहीं पाता है या कह नहीं पाती है, और इस तरीके से पूरे जो दो साल, डेढ़ साल, चार साल जितने भी होते हैं वो गुजर जाते हैं। आपको कहना चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, अगर आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स हो तो बजाय इसके कि आप फिर सारी जिंदगी सोचते रहें कि यार काश कै ही दिन दा, तो उससे बेहतर है कि व्हाई नॉट मेरी जान। आपको कहना चाहिए, यस ये लाजमी है, कहीं पे भी ये बड़ा जबरदस्त रूल है। इसको मैं खुद को भी रिमाइंड करवाता रहता हूँ, आपको भी मैं रिमाइंड करवाता रहूंगा, ये बहुत जरूरी है कि आपने एक्सप्रेसिव होना है, आपने कहना है, यू नो। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी वाकयात होते हैं ना जिसमें आपके साथ कुछ बहुत बुरा होता है। लेट्स सपोज आपके, आपकी फैमिली के अंदर, गर्ल्स के अंदर, लेट्स सपोज, सपोज मैं बात करता हूँ, आपके किसी कजन ने ऊपर आपके ऊपर कोई रॉन्ग अटेम्प्ट की, यू नो, आपको हरास करने की कोशिश की, आप चुप कर जाते हैं, आप नहीं बताते, आप सहम जाते हैं, फिर आप अपने अंदर अंदर डरते रहते हैं, आपको ख्वाबों में उसका चेहरा नजर आता है, आपको वाकया बार बार तंग करता रहता है, फिर इसी तरीके से आप बड़ी मुश्किल से कह के अपनी बड़ी बहन से या अपनी अम्मी से समाओ शेयर कर लेते हैं। मेरी ज़िंदगी में एक मेरी दोस्त थी, उसने मुझे बताया ज़िंदगी में उसके साथ ये हुआ था कि उसके कज़न ने उसको रेप किया, उसके कज़न ने, व्हेन शी वाज़ अलोन एट अ होम, और वो बेचारी किसी को नहीं बता पाई, और बड़ी मुश्किल से जब उसने अपनी अम्मी को बताया तो उसकी अम्मी ने उसे ये कह के चुप करा दिया कि वो मेरे भाई का बेटा है, तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तो ये ना करो। तो वो बेचारी सारी ज़िंदगी कुड़ती रही इस चीज़ को लेकर, अभी भी शायद किसी स्टेज के ऊपर वो इतनी वोकल हो जाए कि इसको वो एक्सप्रेस करे, लेकिन मैं इस इतने बड़े वाक़े को और इतने ख़तरनाक वाक़े को इतने फ्लो में और इतनी आसानी से इसलिए सुना गया हूँ ताकि मैं आई जस्ट डोंट वॉन्ट यू गाइज कि आप बहुत ज़्यादा कोई डर जाएँ इस तरह से हो। मिसाल देने की वजह सिर्फ ये है कि आपकी ज़िंदगी में छोटा वाक़या हो या बड़ा वाक़या, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, यू शुड एक्सप्रेस इट। आप इसको अपने अंदर से निकालें, अंदर मत पकाएं इसको। जितना आप जल्दी इसको निकालेंगे, जितना आप एक्सप्रेसिव होंगे, उतना आपके लिए, जैसे मुझे मेरी ज़िंदगी में कैसे एक दो छोटे छोटे वाक़यात हुए जब मैं बच्चा था, तो उस वक्त और मैंने अपनी अम्मी को आके जब बताया इस तरह की कोई चीज़ें, तो मुझे याद है कि मेरी अम्मी ने उस पर रिएक्ट किया, बड़ा स्ट्रांग रिएक्ट किया, और मेरी माँ उस वक्त से मेरी एक हीरो है। मतलब मैं जब भी देखता हूँ, मैं जब भी, अब ओबियसली शी इज़ डिपेंडेंट ऑन मी, अब नाउ आई अर्न एंड आई गिव टू माई मदर, तब मैं अम्मी से पैसे लेता होता था, कुछ भी हमें चीज़ वीज, यू नो, कपड़े वपड़े कुछ भी होते थे अम्मी देती थी, तो अब हम अम्मी को देते हैं, लेकिन अम्मी स्टिल अ हीरो, बिकॉज अम्मी उस वक्त एक हीरो बनी थी जब हमें एक हीरो की ज़रूरत थी, वैन जब हम अपने माँ बाप की तरफ देख रहे हैं, और अगर माँ बाप भी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त कोई, तो उनको भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को सुने उनको, ऐसा ना करें कि बच्चा कोई चीज़ लेकर आया या बेटी या बेटे ने कोई चीज़ कही तो आप उसको नज़रअंदाज कर दें, उसको उस अपनी, मतलब आपके बच्चे की जिंदगी से बड़ी आपकी इज्जत नहीं है, जैसे आप कहते हैं कि इज्जत खराब हो जाएगी। लेट हर एक्सप्रेस, अगर वो एक्सप्रेस करती है, अगर वो कुछ बताती है, और फिर उस पर रिएक्ट करें, वैसे रिएक्ट करें जैसे आपका बच्चा एक्सपेक्ट करता है, जैसे वो डिजर्व करता है। अब लोग कहते हैं जी सियाने फैसला करेंगे, और सियाने ज्यादातर यही फैसला करते हैं कि चुप हो जाते हैं ऐसे मामलों के ऊपर, और इसी वजह से बच्चों की जिंदगियां साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो बच्चे बड़े होकर अपने साथ वो सारा फतूर लेके जाते हैं, और जो लड़के होते हैं वो खुद बड़े होकर फिर वैसे ही बन जाते हैं जो उनके साथ बचपन में हुआ होता है, और जो लड़कियां होती हैं बेचारी वो फिर किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाती है, फिर लोग कहते हैं जी इन पे जिन आ गए, साया हो गया इन पे, साया नहीं हुआ होता, वो साइकोलॉजिकल मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए एक्सप्रेस योरसेल्फ, और कोई अगर आपको कुछ एक्सप्रेस करता है, आपके सामने कोई बताता है, तो आप उसको सुनिए। ये दो चीजें बहुत ही जरूरी हैं, और तीसरी चीज सबसे जरूरी है ब्रेक। वेलकम बैक, यू लिसनिंग समर क्लब, आई एम इमरान हसन, और कभी कभी हम अच्छी बातें भी करते हैं, आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आपका टाइम हमारे साथ अच्छा गुजर रहा है, और अगर गुजर रहा है तो भी बहुत है, आजकल तो गुजरता ही नहीं है ना, वक्त रुक जाता है, सांसें थम जाती हैं, धड़कन रुक जाती है, ऐसा लगता है जैसे ये लम्हे चलेंगे नहीं, यही रुक जाएंगे, समय थम जाएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है मेरे दोस्त, असल जिंदगी में नहीं, असल जिंदगी में ये चलता है, अच्छा हो या बुरा ये रुकता नहीं है। सो किसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रुकता. अगर आपको लगता है कि आपके लिए रुकेगा तो बिल्कुल नहीं. आपने जो करना है वो कीजिए, ये चलता रहेगा. 11:49 एंड दिस सॉन्ग विल मेक यू फील अ बिट व्हाट डिफरेंट. सुनिए सोच द बैंड. अरे वाह सही हो गया, ये भी ठीक हो गया. वेलकम बैक टू द शो 52 पास्ट. एक अभी हम पुराना गाना सुन रहे थे और हमें बड़ा अच्छा लग रहा था. इसके अलावा ये तो आपको सुना रहे थे, हम कुछ और सुन रहे थे और हमें बड़ा अच्छा लग रहा था. अपने आप में रहना बहुत अच्छा होता है. लोग कहते हैं क्या हर वक्त अकेले बैठे रहते हो, क्या यू नो किसी से बात नहीं करते, तो उनको क्या पता कि ये अकेला रहना भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है. समटाइम्स व्हेन यू कैन सिट विद योरसेल्फ, यू कैन हैव योर ओन टाइम एंड यू कैन टॉक टू योरसेल्फ एंड यू कैन थिंक अबाउट योर थिंग्स, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है. बहुत सारे लोग जिसको बोरियत कहते हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी तफरी होती है. इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है. लेकिन हर किसी का अपना मिजाज है. कुछ लोग बहुत लोगों में रहकर बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग अकेले में रहकर बहुत खुश होते हैं. तरजीह खुशी होनी चाहिए. ज़िंदगी सिर्फ खुश रहने का नाम है. मुझे लगता है ज़िंदगी सिर्फ खुश होने के लिए है. आपकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन जिस चीज़ से आपको मिलती है, ओबियसली अच्छे गुड डीड्स की मैं बात कर रहा हूँ. बाज़ुकात आपको गंदे बुरे काम भी बहुत ज़्यादा लगता है कि सेटिस्फैक्शन देते हैं. दो के ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं गुड डीड्स की बात करूँ. चूंकि हम सब एट टाइम्स अच्छे काम बुरे काम सभी किए जा रहे हैं, कर रहे हैं, उस हम एक रो में चल रहे हैं और हम तो कोई काउंट नहीं रख रहे. काउंट तो जहाँ पे रखा जाना है वहीं रखा जा रहा है. लेकिन अल्टीमेटली ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ खुश रहने का नाम है. एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बचपन में एक चीज़ सिखाई और उनकी बच्चियाँ हैं दो छोटी छोटी, वो हमेशा ही बात करती हैं उनसे, कहो बेटा व्हाट इज़ लाइफ, कहती हैं लाइफ इज़ हैप्पीनेस. तो लाइफ इज़ ऑलवेज हैप्पीनेस. आप अपने लिए खुशी, किसी दूसरे के लिए खुशी, अपने अंदर खुशी, बाहर खुशी, इर्द गिर्द खुशी, ऑलवेज विद द पॉजिटिव माइंड. अच्छा मैं खुद सोच रहा था कि हम जो फेसबुक की होते हैं नॉर्मली वी यूज टू कॉमेंट अलॉट और अक्सर किसी का गाना आया, इसके अंदर ये मसला है, उसके लिरिक्स में ये मसला है, यार वीडियो देखो ये कैसा लग रहा है, जैकेट देखो कितनी पुरानी पहनी हुई है, ये थोड़ी मोटी हो गई है, यू नो इस तरह के फिजूल कॉमेंट करते ही रहते हैं. भाई वैसे ही कह दो अच्छा है यार, हाँ इट्स गुड, उसके अंदर कुछ तो अच्छा होगा ना, कुछ तो अच्छा होगा ना. मतलब आपने जो चश्मा लगाया हुआ है ना, उस चश्मे के अंदर से आपको सिर्फ बुरी, उसमें बुरी चीज़ें होंगी, इट्स ओके. ये जानते हुए कि इसके अंदर बुरी चीज़ें हैं, आप उसमें से अच्छी चीज़ें एक्सप्रेस कर दें ताकि आप उन 12-13 लोगों से मुख्तलिफ हो जाएं, मैं उनसे मुख्तलिफ हो जाऊं कि मैंने एक अच्छी बात की. लेट्स सपोज इस वक्त मुझे कुछ लोग सुन रहे होंगे तो कुछ को लग रहा होगा कि यार ये फारिक बुरा प्रोग्राम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ अच्छा भी तो किया होगा. सो थिंक अबाउट दैट पॉजिटिव थिंग. उससे क्या होगा, माइंड थोड़ा मस्बत मस्बत होता चला जाएगा और इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी विद द टाइम एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर. ज़्यादा कभी कभी हमारा बोलने को दिल करता है, जब दिल करता है तो हम बोलते हैं, बिकॉज अब हम ये लिबर्टी ले लेते हैं रेडियो के ऊपर. कभी हम नहीं लेते थे, कभी हम सिर्फ आते थे और फैंस के चक्कर में कि यार फैंस हो जाएं, ज़्यादा थोड़ा यू नो ज़्यादा बल्ले बल्ले हो जाए, वाह वाह क्या शो है, बड़ी एनर्जी है, सब कुछ अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन अब हम उस लिबर्टी को थोड़ा और तरीके से इस्तेमाल करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है हमें. आई होप यू लाइक द शो. अगर अच्छा लगा आपको तो अच्छा है, कल दोबारा सुनिएगा. कल हम आपको थोड़ा कोशिश करेंगे चीखे मार के एंटरटेन कर दें. और अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं भी लगती हैं. जैसे कभी भी आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जब आप फजूल कॉमेंट या मैसेज करते हैं. कभी कभी मैं भी आपको बहुत अच्छा नहीं लगता जब मैं फजूल गाने चलाता हूँ या फारिक बातें करता हूँ या लेट आता हूँ. इट्स ओके, ये भी ठीक है. टाइम फॉर मी टू साइन आउट. एंजॉय दिस ब्यूटीफुल नंबर बाय आसिम अज़हर. कल मिलेंगे इंशाल्लाह रात 10 बजे. टिल देन मुस्कुराइए. कौन से पैसे लगते हैं आपके. अल्लाह हाफिज़.